श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुनती है तो हर एक जीवन आप में आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं। पिताजी, आप उन सब के साथ हो, उनकी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन इस बात को जान सके कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रत्येक के जीवन में शांति और आनंद हो। आज इस समय अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम लोग यशाया उसके पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे जहां पर हमने देखा कि परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, फिर भी वह हमें धो करके शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है अंतिम दिनों के संबंध में भविष्यवाणी, राज्य और महाक्लेश के विषय। यशाया के अध्याय 2-5 तक एक ही भविष्यवाणी है। ये अध्याय वर्तमान समय से इसराइल के अंतिम दिनों तक की भविष्यवाणी है। इसराइल अर्थात 12 गोत्र जिसको इसराइल कहा गया है। इन अध्यायों के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर इसराइल के सब गोत्रों को संबोधित कर रहा है, वे सब पुनः स्वदेश आएंगे। परमेश्वर इसराइल को एक प्रजा भी मानता है। इसराइल के अंतिम दिन कलीसिया के अंतिम दिनों से अलग हैं। इन अध्यायों में परमेश्वर कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा है, हम इस बात पर विश्वास करें। पौलुस कहता है कि कलीसिया पुराने नियम में प्रकट नहीं थी, अतः वह एक भेद था। हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं जहां पर पौलुस इसे अति स्पष्ट करता है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। यदि यशाया कलीसिया के बारे में जानता तो वह पौलुस के समय नया प्रकाशन नहीं होता। पौलुस के युग से आज तक कलीसिया संसार में परमेश्वर के वचन के प्रसारण का एक साधन है। मेरे मित्रों, कलीसिया इस संसार से एक दिन उठा ली जाएगी। यशाया का संदेश कलीसिया से परे उस समय की ओर केंद्रित करता है जब परमेश्वर एक नया काम करेगा। हम उस समय को महाक्लेश का समय कहते हैं जिसके अंत में वह अपना राज्य स्थापित करेगा। तो आइए हम आगे देखेंगे यहूदा और यरूशलेम के भविष्य का दर्शन। यशाया 2:1 में लिखा है, आमोस के पुत्र यशाया का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। यशाया इसराइल, यहूदा और यरूशलेम की चर्चा करता है तो उसका अभिप्राय इसराइल की प्रजा और इन स्थानों से है। यदि वह उपमाओं का प्रयोग करता है तो अति स्पष्ट करता है कि वे उपमाएं हैं। वह स्पष्ट करेगा कि वह किस बात को किस प्रसंग में उपयोग कर रहा है। भविष्यवाणी को कुछ कलीसियाओं के धार्मिक शब्दों से जोड़कर उसकी निरर्थ व्याख्या से सावधान रहें। हम यशाया 2:2 में पढ़ते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि अंत के दिनों का अर्थ कलीसिया के अंतिम दिनों से नहीं है। कलीसिया के अंतिम दिन धर्म त्याग के दिन होंगे जिसे पौलुस 1 और 2 तीमुथियुस में स्पष्ट करता है। 1 तीमुथियुस 4:1 में वह कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। अब आप देख सकते हैं कि कलीसिया का अंतिम समय और इसराइल का अंतिम समय अलग अलग है। यह एक ही युग का समय नहीं है, यद्यपि उनमें परस्पर एक दूसरे के समयों को ढांकना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, इस पद में जिन अंतिम दिनों का उल्लेख किया गया है वह महाक्लेश का समय है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पूछने पर इसे स्पष्ट किया था लूका रचित सुसमाचार 21:7 में, यरूशलेम का विनाश जो अंत के दिनों में होगा। महाक्लेश का अंत प्रभु यीशु के फिर से आने पर होगा। वह अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। यशाया का 1:2-5 महाक्लेश के युग और प्रभु के राज्य के विषय में चर्चा करता है। यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यह इसराइल का वह समय होगा जब कलीसिया संसार से उठा ली जाएगी। धर्मशास्त्र में पर्वत का अर्थ है राज्य, अधिकार या प्रभुता। दानियल अपनी भविष्यवाणी में इसे स्पष्ट करता है कि परमेश्वर यहोवा का भवन पर्वतों के ऊपर स्थापित किया जाएगा, अर्थात संसार के सब राज्यों में सबके ऊपर। संसार के सब राज्य प्रभु यीशु के अधीन होंगे और वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। आज इसराइल इतना अधिक ध्यान का केंद्र और संवेदनशील भूभाग इसलिए है कि परमेश्वर ने उसे अपने राज्य में विश्व का केंद्र होने के लिए चुना है। उन दिनों के विषय दानियल कहता है 2:35 में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता नहीं रहा और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। परमेश्वर का राज्य संसार के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करेगा। यशाया 2 उसके 3 पद में लिखा है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। राज्य और धर्म दोनों का केंद्र यरूशलेम में होगा। प्रभु यीशु दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उस समय पृथ्वीवासियों की चिंता का मुख्य विषय होगा परमेश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरा करना। वे उसके मार्गों की खोज करना सीखेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे। यशाया 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। प्रभु का यह सहस्त्र वर्षीय राज्य मनुष्यों के लिए परीक्षा का समय होगा। उस युग में अनेकों का न्याय होगा और असंख्य जन उद्धार पाएंगे। वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। उस समय पृथ्वी पर प्रभु का राज्य धार्मिकता का राज्य होगा। वह जाति जाति को एक दूसरे के साथ निष्पक्षता और न्याय संगत व्यवहार के लिए विवश करेगा। पहली बार सब जातियां शांति से रहेंगी। प्रभु के राज्य में ही मनुष्य तलवारों को हल के फाल में बदलेगा। योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि महाक्लेश के समय इसका विपरीत होगा। मनुष्य हल के फाल को पीटकर तलवार बनाएगा। मेरे विचार में हथियार न बनाना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है। शांति और सुरक्षा के लिए आपको कानून और व्यवस्था की आवश्यकता है। तलवारों को पीटकर हल के फाल बनाने की भविष्यवाणी प्रभु के सहस्त्र वर्षीय राज में पूरी होगी। उस समय आपको घर में ताले लगाने और रात में सड़कों पर चलने से डर नहीं लगेगा और डरने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उस समय सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पृथ्वी पर प्रभु का राज्य शांति का समय लाएगा। वह शांति का राजकुमार है और सिर्फ वही हमें शांति दे सकता है। मेरे मित्रों, आज यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर शांति लाने की प्रतीक्षा करे तो वह मूर्खता और पागलपन ही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व में शांति लाने के लिए स्थापित किया गया था, युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र है। उसकी अशक्ति सिद्ध हो चुकी है। उसने तो पृथ्वी पर केवल तानाशाही स्थापित की है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और सोचने की क्षमता रखते हैं और परमेश्वर के विचारों को समझ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक महान दुष्ट संसार में वास कर रहे हैं। यदि आप मनुष्यों में भाईचारा खोज रहे हैं तो आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि मनुष्य संसार में शांति स्थापित करने योग्य नहीं है। जब तक मनुष्य के मन में पाप होगा और मनुष्यों पर राज करने की लालसा होगी, तब तक शांति नहीं आएगी। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और अपने जीवन को संपन्न बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास में सब कुछ है, लेकिन वो दूसरों को देना नहीं चाहता है, क्योंकि पाप का घड़ा भरना बाकी है। यशाया 2 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। ध्यान दीजिए, भविष्य को ध्यान में रखें तो निश्चय ही हमें प्रभु यीशु की ज्योति में चलना होगा। परमेश्वर को अलग करके आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको शांति दे सकता है। आज बहुत सारे लोग सिनेमा घरों में, शराब के अड्डों में और बहुत प्रकार से अपने जीवन में शांति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि शांति सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। यशाया 2:6-9 में लिखा है, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिस्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं, इस कारण उनको क्षमा न करना। मेरे मित्रों, यहूदा ने अन्य जातियों की रीतियों को अपने धर्म में अपना लिया था। उन्होंने अश्शूर और बेबीलोन के रीति रिवाजों को अपना लिया था। शीघ्र ही वे अन्य जातियों के समान सृजनहार की अपेक्षा सृजित वस्तुओं की उपासना करने लगे थे। यशाया 2:10-12 में लिखा हुआ है, यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। परमेश्वर घमंडी को अर्थात उस मनुष्य को तोड़ देना चाहता है जो यह सोचता है कि वह अपने आप को और संसार को परमेश्वर के बिना चला सकता है। उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ऐसे घमंड को तोड़ता है। यशाया 2:13 में लिखा है, और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं। ध्यान दें, लबानोन के देवदार और बासान के बांज वृक्ष मनुष्य के घमंड को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यशाया 2:14 में, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर। मेरे मित्रों, यहाँ पर यह सरकार और समाज के संबंध में कहा गया है। यशाया 2:15 हम पढ़ते हैं, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर। यह सेना का प्रतीक है जिसको दंड दिया जाएगा। तब यशाया 2:16 में लिखा है, तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। यहाँ व्यापार और कला को भी दंड दिया जाएगा। तब हम यशाया 2:17 पढ़ते हैं, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। परमेश्वर मनुष्य का दिखावा और घमंड को समाप्त कर देगा। आज जो हम कुछ करते हैं और दिखाते कुछ हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यशाया 2:18 हम पढ़ेंगे, मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर झूठे धर्म का अंत करेगा, अर्थात जो सृष्टि को पूज रहे हैं और परमेश्वर को भूल चुके हैं, उनको स्मरण दिलाएगा। यशाया 2:19 में लिखा है, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6:15-16 में व्यक्त है कि न्याय के उस समय में मनुष्य क्या करेगा। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों और चट्टानों में जा छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेरे मित्रों, आज आप टीवी पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सरकार, व्यापार और कला तथा मनुष्य का दिखावा और घमंड तथा उसका धर्म देखते हैं। वह दिन आने वाला है जब मनुष्य का सारा घमंड तोड़ा जाएगा और प्रभु यीशु पृथ्वी पर सम्मानित किया जाएगा। आज संसार उसे सरकार में, समाज में, व्यापार में, कला में या दिखावे में उसका उचित स्थान नहीं दे रहा है। संसार के धर्मों में भी उसका उचित स्थान नहीं है, वह बाहर कर दिया गया है। जब वह आएगा तब मनुष्य गुफाओं में छिप जाएगा। मैं यह तो नहीं जानता कि पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि एक दिन भविष्य में वह गुफाओं में होगा। यशाया 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। ध्यान दीजिए, यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, यह महाक्लेश का समय होगा। यशाया 2 अध्याय उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। मेरे प्रियो, मनुष्य में विश्वास ना करें। हम सांस तो बाहर छोड़ते हैं, परंतु नहीं जानते कि फिर सांस ले पाएंगे या नहीं। यह मनुष्य की नाश्वरता है। एक भी सांस रुकी और वह दृश्य से बाहर हुआ। आज अपने दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त असंख्य मनुष्यों को उस दिन दिल का दौरा पड़ेगा और वे पृथ्वी पर नहीं होंगे। मनुष्य पर भरोसा आप न रखें। आज ही अपना भरोसा प्रभु यीशु पर रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी अर्धांगिनी पर भी भरोसा न रखना। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर को आप प्राथमिकता दें, उस पर आप भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा आप अपने जीवन को बचा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को घटित होते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर मुझे और आपको इन सब के द्वारा से बताना और सिखाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, उस दिन के भयानक मृत्यु से बच जाएं। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो शांति आ जाए, वो प्रेम आ जाए आपके परिवार में, बच्चों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में? यदि हाँ, तो आज आप प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपको अपनी शांति दे सकता है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। ओ धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन।